बातें भी सुननी पड़ती हैं। तो सही परफॉर्म करने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह अल्लाह के हम कामयाब हो जाएं अल्लाह के यहाँ जाके, जो मरने के बाद फैसला होगा किधर जाएंगे, जो जन्नत में चला है वो कामयाब है, जो जन्नत में नहीं गया वो फंस जाएगा, नाकाम हो जाएगा। तो उस मरने के बाद की ज़िंदगी को सही करने के लिए अभी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप सब फरमाया कि अक्लमंद शख्स वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। हमारी तैयारी होगी तो हम आगे कामयाब होंगे। कब्र के जो तीन सवाल हैं, तैयारी के बगैर कैसे जवाब दे सकते हैं? अभी तो बहुत आसान है, आप मेरे से भी पूछे मैं जवाब दे दूंगा। अभी मेरे से को पूछे जी पालने वाला कौन है, मैं कहूँ अल्लाह है। पूछेंगे दीन क्या है, मैं कहूँ इस्लाम है। आपसे उसके बारे में पूछेंगे, शबी मुबारक दिखाएंगे, मैं कहूँगा ये हमारे नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी बहुत आसान है क्योंकि अभी ज़ुबान ने बोलना है। जब कब्र में चले जाएंगे ज़ुबान को ज़िप लग जाएगी, दिल बोलेगा। दिल में मेरे ये है ही नहीं, हमें दिल में ये होगा अल्लाह पालने वाला, तो हम झूठ बोलें, हम फ्रॉड करें, हम अपने थोड़े से नफ़े के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं, हम अपने बच्चों का पेट भरने के लिए दूसरों के बच्चों का पेट काटते हैं। ये आम हो रहा है, बेहयाई के कितने काम चल रहे हैं, हम उसको बुरा समझते ही नहीं। बदर का वाकया रमज़ान में हुआ है। वो जो 1000 लोग थे उस तरफ, उनके साथ गाने बजाने वाले लोग भी थे जो आप सर से मुखालिफ थे, जो उनका दिल बहलाने के लिए साथ है। आज हर घर में गाने बजाने चल रहे हैं, फिल्में चल रही हैं, ड्रामे चल रहे हैं, कोई बुरा समझ नहीं रहा इसको। और हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ऐसे माहौल में नहीं बैठते जहाँ अल्लाह के रसूल की बात हो। ये तो रमज़ान का बाबरकत महीना है, मस्जिदें फुल हैं, कुरान पढ़ा जा रहा है, लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात सुन लेते हैं। जैसे रमज़ान ख़त्म होना है, मुझे यहाँ का नहीं पता लेकिन पीछे ऐसा ही है, मगरिब पे ऐलान होगा कि कल ईद है, ईशा पे कोई नहीं होगा, मस्जिद खाली, फजर पे नहीं होंगे। तो इसका यकीन अल्लाह की ज़ात पर तो है ही नहीं। जिसका यकीन अल्लाह की ज़ात पे होगा वो ईद वाले दिन भी फजर पड़ेगा, वो ईद वाले दिन जुम्मा भी आए तो पड़ेगा, वो नमाज नहीं छोड़ेगा। तो उसको पता है भी ये हुक्म अल्लाह की तरफ से मेरे पे फ़र्ज़ है, इसको मैं किसी हाल में नहीं छोड़ सकता, चाहे रोज़ा हो या ना हो। तो यकीन सही होगा तो अमल सही होंगे। यकीन सही नहीं, यकीन पैसे पे है, अपने ओहदे पे है, अपनी पढ़ाई पे, अपने खेलने पे, अपने कारोबार पर है। वह अल्लाह नुकसान भी दे सकते हैं, फिर क्या करेंगे? जैसे अल्लाह हमें ज़ीरो पे आउट करते थे, बहुत दफ़ा आउट हुए, एक एक पूरी पूरी सीरीज़ फेल हो जाते थे, क्या कर सकते हैं? इतनी अच्छी प्रैक्टिस करके गए लेकिन आगे स्कोर ही नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें अल्लाह के हाथ में। तो कुरान आजकल कितना पढ़ा जा रहा था, अंबिया कराम के वाकयात इसीलिए बयान फरमाए कि हम सबक हासिल करें, हमारे पे भी कोई मुश्किल आए हम अल्लाह की तरफ नज़र करें। ये पहला हिस्सा ही है, और सारे नबियों को अल्लाह ने ये दिया। मैं जब क्रिश्चियन था उस वक्त मैं ला इलाहा इल्लल्लाह उस वक्त भी कहता था, लेकिन जन्नत में नहीं जा सकते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से हम सब पे जन्नत वाजिब है, फ़र्ज़ नहीं है। फ़र्ज़ के लिए तो अमाल करने पड़ेंगे। जैसे एक कबीला आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उन्होंने आया कहा जी हम ईमान ले आए, अल्लाह का हमें बेशी माफ़ करे। इससे पहले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ फरमाते, अल्लाह ने कुरान उतारा। अगर वीडियो ना बनाया तो अच्छा है भाईजान। तो उन्होंने इससे पहले एक आज़म को फरमाते हैं, अल्लाह ने कुरान उतारा, अल्लाह ने फरमाया कि इनसे कह दिए कि अभी आप इस्लाम में दाखिल हुए हैं, ईमान बनाने के लिए तो बड़ी मेहनत और कुर्बानी है, ईमान ऐसे थोड़ी बन जाता है। सहाबा का ईमान देखिए कैसे बना है, 11 साल आप ने मेहनत की, 11 साल आप की मेहनत थी। देखिए सिखाने वाले कौन हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब, और सीखने वाले सहाबा। 10 से 11 साल लगे ईमान बनने में, आप सोचिए हमारा ईमान कहाँ होगा। 10 से 11 साल उनको लगे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखने से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा रहे हैं, फिर इतना टाइम लगा है। तो हमारे ईमान का तो पता ही कोई नहीं। हमें रोज़ अपनी ज़िंदगी से पता है कि हम कितने ईमान वाले हैं। कितना हम सच बोल रहे हैं, कितना लोगों के साथ हम फ्रॉड कर रहे हैं, क्या हमारी 24 घंटे की जिंदगी, हम सबको पता है। अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहे हैं, अल्लाह की बेशी माफ़ करे, कि जो चाहता है कि मुझसे मोहब्बत करूँ, उसके गुनाहों को माफ़ कर दूँ, वो मेरे नबी की मुकम्मल इत्तबा करे। लेकिन हम मुसलमान खुद ही कह रहे थे मौलवी साहब से, मौलवी साहब सुन्नत है, फ़र्ज थोड़ी है। अल्लाह कह रहे हैं कि मैं उससे मोहब्बत करूँगा, मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर दूँगा जो मेरी नबी की नकल करेगा। इत्तबा का मकसद ये है कि नकल करनी भी हर हाल में। दुनिया में आप एग्जामिनेशन हाल में और नकल मारें तो पकड़े जाते हैं, लेकिन यहाँ कामयाबी है। अल्लाह कह रहे मेरे महबूब की नकल करो, मैं कामयाब कर दूँगा, सीधी कामयाबी है, कोई रोक टोक नहीं उसमें। सुन्नत का रास्ता सीधा जन्नत का रास्ता है, और कोई मुश्किल काम भी नहीं, सबसे आसान काम है और सस्ता भी है। शादी ब्याह देखें जो आप गैरों के तरीकों में इतने पैसे लगते हैं और लोग खुश भी नहीं होते, और गुनाह मुफ्त का है। और जो सुन्नत तरीका है निकाह है, वलीमा है, बात ख़त्म, आसान सा काम है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत की औरतों के सरदार, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर जन्नत में, आप सबसे घर के सामने कितनी सादा शादी हुई, और जो चाहते अल्लाह से ले लेते वो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से जो चाहते ले सकते थे, लेकिन उम्मत के लिए बता के गए कि इस तरह शादियां करेंगे तो कामयाब होंगे, ये गैरों के तरीकों पर करेंगे कभी कामयाब नहीं हो सकते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह तुम्हें बेशी माफ़ करे कि वो लोग जन्नत में नहीं जा सकते जो इनकार कर देंगे। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह इनकार से क्या मुराद है, तो आपने फरमाया जो मेरे तरीकों को अख्तियार नहीं करेगा वो जन्नत में नहीं जा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से हमें भी फ़ायदा होगा, दूसरों को भी होगा, ये तो पक्की बात है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे हुआ है। सईद अनवर हमारे जो क्रिकेटर थे वो पैदाइशी मुसलमान है, लेकिन अगर जिन्होंने पहले देखा हुआ वो सुन्नत पे ज़िंदगी नहीं थी उनकी, जैसे वो सुन्नत पे आए अल्लाह ने मुझे उनके ज़रिए कलमा दे दिया। आम मुसलमान में और एक सुन्नत पे जो ज़िंदगी गुजारा होगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं शुरू से मुसलमान लोगों में रहा हूँ, जिस मोहल्ले में मैं रहता था सब मुसलमान थे, एक हमारा घर गैर मुस्लिम था, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई दीन नज़र नहीं आता था। वो जुमे वाले दिन मस्जिद जाते थे, मैं इतवार वाले दिन चर्च जाता था, मेरा हुलिया भी वैसा था, उनका हुलिया भी वैसे था, उनके चेहरे पर भी दाढ़ी नहीं थी, मेरे पे भी नहीं थी, पैंट शर्ट वो भी पहनते थे, मैं भी पहनता था, सब एक जैसा था। तो कभी शौक पैदा नहीं, अभी इस्लाम भी कबूल करना चाहिए, मुसलमान कैसे होते हैं, कभी पूछा भी नहीं हमने उनसे। लेकिन जैसे ही सईद भाई की ज़िंदगी तब्दील हुई है, उनकी ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क आया, ऐसी ज़िंदगी है सुन्नत की। भाई हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी से छोटी सुन्नत भी सरासर हदायत का ज़रिया, छोटी से छोटी सुन्नत। लेकिन एक जंग में मिसवाक नहीं कर रहे थे, अल्लाह कामयाबी नहीं दे रहे थे। एक जंग ओहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी, जीती हुई जंग हरवा दी अल्लाह। अल्लाह ने हम सब तक पैगाम पहुंचाना था, जो मेरे महबूब की बात नहीं माने वो कामयाब नहीं हो सकता, चाहे जो मर्ज़ी कर लें आप, जितने मर्ज़ी आप मशहूर हो जाएं, जितने मर्ज़ी पैसे वाले हो जाएं, अगर सुन्नत ज़िंदगी नहीं, फंस जाएंगे आखिरत, पक्की बात है। यकीन की कमी है बस, और कुछ भी नहीं। तो सबसे आसान काम ही है। मैं तो बाद में आया हूँ, मैं तो 20-21 साल हुआ इस्लाम में दाखिल हूँ, लेकिन सबसे आसान काम ये है, 5 बजे की नमाज 40 मिनट में ख़त्म। 5 बजे की नमाज तो पढ़ेगा पूरे दिन में, 40 मिनट में काम ख़त्म है। और इनाम देखें अल्लाह कितने दे रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं कि एक दुनिया में दूंगा जो रिस्क की तंगी ख़त्म हो जाएगी, और 4 मरने के बाद, देखें कितनी ज़रूरत पड़ेगी। एक नेकी भी नहीं कोई देगा, बाप बेटे को नहीं देगा, माँ बेटी को नहीं देगी नेकी, नफ्सा नफ्सी पड़ी होगी। तो वहाँ हदीस में आया कि मरने के बाद अमाल नामा सीधे हाथ में दे जाएगा, पुलिस रात से बिजली की तरह गुजार दिया जाएगा, कब्र का अजाब नहीं होगा, और बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में। ये हम सब सारे अमाल क्यों कर रहे हैं? जन्नत के लिए कर रहे हैं, पैसा तो कोई नहीं मिल रहा यहाँ, हम सब जन्नत में जाना चाह रहे हैं इसलिए सब कर रहे हैं। तो ये तो फिर रमज़ान के बाद भी ऐसे होना चाहिए, ये तो अल्लाह से हमें दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह जो रमज़ान में हम अमाल कर रहे हैं इसको मरते दम तक हमारे से करो। जैसे हदीस में आता है ना, जिसका पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और आखिरी कलमा भी ये हुआ, कोई सवाल नहीं होगा उसे, चाहे 1000 साल ज़िंदगी क्यों ना गुजारी, सीधा जन्नत में। तो हम सब जन्नत के लिए कर रहे हैं। मैंने भी कलमा इसलिए मैं जन्नत में चले, मशहूर था मैं पहले, पैसे थे मेरे पास, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी इनसे, मैं उस टाइम अपनी पीक पर था, मैंने कलमा पढ़ा। ये आखरत का मामला है, आखरत हमारी सही हो जाए। अजब अबू बकर सदीक रजी अल्लाह था, 8 रेशम की दुकानें थी जब इस्लाम लाए, जब दुनिया से जा रहे हैं तो कुछ भी था उनके पास। ये ईमान वाले थे। ईमान वाले ऐसे होते हैं कि जब सारा कुछ अल्लाह के ऊपर, जान माल वक्त सब अल्लाह के रास्ते में, तो जो हदीस में आता है कुफर नफाक उस शख्स के लिए जो मौज़न की अजान की आवाज़ सुने और मस्जिद में ना आए, और मुनाफिक के लिए ये दोनों नमाजें भारी हो जाती, कौन कौन सी, फजर और ईशा, ये दोनों मुश्किल होती हैं, हदीस में आया। और हदीस में ये भी आया कि कसरत से जो अंधेरों में मस्जिदों में जाएगा आखरत के पूरे नूर की खुशखबरी सुना दीजिए, जहाँ बैदे हैं वहाँ फजीलते भी बहुत हैं, आखिर में पूरे के पूरे नूर की खुशखबरी सुना दी, जो फजर और ईशा की नमाज बाजमात पढ़ेगा अंधेरों में मस्जिदों में आएगा। मुश्किल होता है ना, फजर की नमाज आप किसी को दिखाने के लिए थोड़ी पढ़ सकता, कोई आप बिस्तर छोड़ के आ रहे हैं, इधर सर्दी के माहौल में जब सर्दी फुल हो कैसे बंदा आए, जो उस वक्त अल्लाह के लिए आएगा सोचे उसको अल्लाह कैसा प्यार की नज़र से देखे, बिस्तरा छोड़ेगा। हाँ जी, और गर्मियों में बिल्कुल शॉर्ट होता है टाइम, छोटी रात होती है उसमें भी आते हैं लोग, जिनका यकीन अल्लाह की ज़ात पे होता है वो मस्जिद में आता है। जिसको ये होता है मैंने सुबह काम पे जाना है, मैंने खेलना है, वो तो फिर गया। काम में भी मदद अल्लाह ही करेंगे, खेलने में मदद अल्लाह ही करेंगे, तो अल्लाह को साथ ले कर चलना चाहिए। और नमाज आप सबसे उनकी आँखों की ठंडक है, जो नमाज नहीं पढ़ा वो आंखों को ठंडक पहुंचा रहा है या गरमाइश पहुंचा रहा है, तो उससे अल्लाह खुश होंगे जो अल्लाह के महबूब को मुश्किल पहुंचा रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें हमारे लिए कितनी मुश्किलें उठाई, सारी सारी रात खड़े होकर नफलें पढ़ी हैं, पाँव मुबारक सूज जाते थे, और नमाज का तोहफा अल्लाह ने अपने पास बुला कर दिया। वाहिद हुक्म था जो ऊपर बुलाया, बाकी सब ज़मीन पर आए, कितना अहम हुक्म होगा। ईमान के बाद सबसे बड़ा हुक्म ये है नमाज का, उसको हम इजी ले लेते हैं। सहाबा को नमक भी चाहिए था, दौर का नफल पढ़ के अल्लाह से नफल मांग, वो नमक मांगते थे, नमक के लिए भी ये करते थे। एक सहाबी मस्जिद में आपसे फरमाया कि ये किस लिए आया होगा, सहाबा से पूछा, उन्होंने कहा यार आपको पता भाई अल्लाह को, उन्होंने कहा ये नमक चाहिए इसको इसलिए आया, लकम बेशम नमक के लिए भी दौर का नफल पढ़ते हैं। हम फर्ज नमाज छोड़ देते हैं। नमाज अल्लाह से बरादरा लेने का एक जरिया है, आप अल्लाह के सामने खड़े हैं, अल्लाह पा हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक दे। और नमाज जानदार हो जाए इसके लिए इल्म हासिल करना, इल्म क्या है, जिससे अल्लाह की पहचान हो जाए, तरीके मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, ये इल्म है। बाकी सब जितना भी ये दुनियावी ज़रूरियात हैं वो इल्म नहीं है, वो ताली है, वो दुनियावी पढ़ाई है, या क्रिकेट जैसे हम खेलते हैं पैसा कमा रहे हैं इससे, इसका आखरत से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ ये कि ईमानदारी से खेलें, ईमानदारी से काम करें, जो भी जिस फील्ड में है उसमें दो नंबरी कोई ना करे, रिश्वत ना खाए, फ्रॉड ना करे, झूठ ना बोले, ये होना। लेकिन सही इल्म कुरान और हदीस का ही है, वो जो सहाबा ने हासिल किया। सहाबा में ना कोई डॉक्टर था, ना कोई इंजीनियर था, ना कोई क्रिकेटर था, हाँ कारोबार करते थे, ईमानदारी से करते थे। वो देखें एक सहाबी रसूल के पास एक गाहक आया, उन्होंने कहा सुबह से मेरे पास 2-3 आए, आप साथ ली शॉप पे चले गए, हम ये कर सकते हैं? हम तो ये कहें साधने की चीज़ सही नहीं है भाई, हमारी सही है। ईमान की कमजोरी, वो आपस में ऐसे करते थे। वो तो वाक्या सुने होंगे, साहबी पड़े हुए थे चार पांच, पानी एक को दिया उन्होंने, दूसरे के बाद उधर चले गए, उधर ऐसे एक दूसरे के लिए करते थे, आखिर में सब शहीद हो गए। तो ये उसी वक्त होगा जब हमें सही इल्म हमारे पास होगा। अभी हम सिर्फ दुनियावी इल्म है जिससे हम बस आने दे, चाहे हराम है जो भी है आने दे, बस उस चक्कर में, क्योंकि वो इल्म ही नहीं है हमारे पास, उलमा से हमारा रास्ता ही नहीं है। हम उलमा से पूछने भी, कोई भी काम है करने लगे, कारोबार करने लगे हैं, कोई काम करने लगे, जैसे हमें सुन्नत के बारे में नहीं पता, बाद लोगों को नहीं पता होता, तो भाई उलमा से पूछ लें कि आपसे मुबारक ज़िंदगी कैसी थी, हुलिया कैसा था, वो ये काम इस वक्त ये हम करने लगे, आपसे का इसमें क्या तरीका था, पूछना ना चाहिए, ताकि हमें इल्म हो ना सही गलत क्या है, कहीं गलत ही ना चले जाए। रुख सही होगा तो पहुंच ही जाएंगे, दुनिया की तेज तरीन गाड़ी हो, लेकिन जाना अगर हम पाकिस्तान में, मैं बात करूँगा, जाना हो कराची और मुँह पेशावर की तरफ, आप पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि रुख ही गलत है। तो रुख हमारा सही होना चाहिए। जिक्र करने वाले, जिक्र से अल्लाह का ध्यान नसीब होता है, जो जिक्र करता है वो ज़िंदा है, जो जिक्र नहीं करता वो मुर्दा है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने एक जंग के मौके पर सामने 50,000 या 60,000 लोग थे, और ये कह रहे थे मैं अकेले इनको देख लूँगा, क्यों कह रहे कि भाई मैं जिक्र करता हूँ मैं ज़िंदा हूँ, वो तो जिक्र ही नहीं करते वो मुर्दा है सारा। तो ये भी यकीन की बात है, सोचे कैसा यकीन अल्लाह की ज़ात पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे यकीन था कि जो जिक्र करता है वो ज़िंदा है, बाकी सब मुर्दा है। जिक्र से अल्लाह का ध्यान नसीब होता है। तीसरा कलमा, इस्तग़फ़ार, दुरूद शरीफ ये पढ़नी चाहिए। और आजकल रमज़ान के मौके में, रमज़ान के महीने में, तो चार चीज़ें अल्लाह से बहुत ज़्यादा कसरत से मांगनी चाहिए। एक तो ये है कि कलमा पढ़ना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, जितना ज़्यादा हो सके कसरत से पढ़ना चाहिए। इस्तग़फ़ार करना चाहिए, अपने गुनाहों पर इंदामत हो, और अल्लाह से जन्नत मांगनी चाहिए, जन्नत का शौक होना चाहिए। फिर अल्लाह से दोज़ख़ से पनाह मांगनी चाहिए, ऐसा बाबरकत महीना है। आपने फरमाया है कि बदकिस्मत है वो शख्स जो रमज़ान का महीना पाए अपनी मगफरत ना करा पाए, बदकिस्मत है। देखो खुशकिस्मत है हमें फिर रमज़ान मिल गया, पता नहीं अगली बार मिलना है कि नहीं मिलना, ये तो अल्लाह को ही पता है। तो ये अल्लाह ने बाबरकत महीना में दिया है, इसमें ऐसे काम करें जो हमारी आखरत बना, और हमेशा हमेशा के लिए इसकी नीयत करें कि हम इंशाल्लाह मरते दम तक ये करें, और अखलाक हमारे बेहतर हो। ये अखलाक से दीन फैला है। आप देखें, एक यहूदी से आप सल सब ने कर्ज़ा लिया, अल्लाह का मुझे माफ़ कर, जो डेट दी हुई थी ना उस डेट से पहले आ गया वो लेने, और आपसे फरमाया कि भाई ये आपकी तारीख ही नहीं है, डेट ही नहीं है आपकी, तो बाद में है। तो उसने ज़रा थोड़ा सा अल्फाज सख्त इस्तेमाल किए। पास हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े थे, वो भी ज़रा जलाली आदमी सख्त थे, उन्होंने भी थोड़े अल्फाज ऐसे सख्त इस्तेमाल किए। आपसे ने रोका हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, और ये फरमाया कि इसका कर्ज़ा भी दें और इनको इतनी खजूरें ज़्यादा दें जो आपने इनसे ऐसी बात की। तो वो यहूदी ये अमल देख के मुसलमान हो गए। ये अखलाक थे आपसे, हम किसी को कर्ज़ा दे दें वापस लेना मुश्किल हो जाता, भिखारी बना देते, कर्ज़ा नहीं देंगे आप। लेकिन इस्लाम में ये है, जो सही इस्लाम पे चले वो ऐसी हरकत नहीं करेगा, वो आप सबसे मुबारक ज़िंदगी देखेगा कि उन्होंने क्या अमल किया था। इस वक्त ताइफ का वाक़या आप पढ़ा होगा, सुना होगा, फिर मक्का फतह किया, आप से दो बहुत से लोगों ने कहा बदले का दिन, आपने फरमाया बदले का नहीं माफ़ी का दिन है। तो बहुत से लोग मुसलमान हुए, हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त मुसलमान हुए, जिन्होंने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह का कलेजा चबाया था, उनको भी माफ़ कर दो। तो अखलाक से दीन फैलेगा भाई। कभी भी अगर हम लोगों से नफ़रत करेंगे, गैर मुस्लिम से या किसी से, तो वो कभी हमारे करीब नहीं आए। ये सब इंसान अल्लाह के बनाए हुए, हम सब ने उनसे वैसे ही मिलना है जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए, प्यार मोहब्बत से, ताकि वो आपकी बात सुने। जब बात सुनेंगे अल्लाह अल्लाह के रसूल की तो करीब आएंगे। हम जैसे अपने भाई हैं जो, उनसे भी ऐसे मिले, तरगीब दें, प्यार मोहब्बत से, मस्जिद में लाने वाले हो जाएं, जैसे कुरान में अल्लाह का बेशी माफ़ करे कि उससे बेहतर किसकी बात है लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। तो लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाना, अल्लाह की तरफ बुलाना, तो ये तो सबसे बड़ा काम है। और जो भी अमल करना है हमने अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, ज़कात दे रहे हैं, सदका दे रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, हर काम में हमने देखना है कि हम कर किसके लिए है। अगर ज़रा भी दिखावा आया ना, अल्लाह पाक कहेंगे भी जाओ जिसको दिखाने के लिए किया था उससे। मेरे दिल में क्या आपको नहीं पता, आपके दिल में क्या मुझे, लेकिन अल्लाह को पता है सबके दिल में क्या है। तो अल्लाह उसका अजर दुनिया में देंगे, आखिरत में देंगे। जैसे हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिया अल्लाह, सलाम आया अल्लाह का जब उन्होंने अपना सारा घर का सामान अल्लाह के रास्ते में दिया, उनका सलाम आया। औरतों में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह को सलाम आया, उन्होंने भी अपना सारा कुछ अल्लाह के रास्ते में लगा। ये तो अल्लाह को पता जो कर रहे, एक खजूर का दाना दे दिया अल्लाह के रास्ते में, तो अल्लाह पाक आखरत में बढ़ा चढ़ा कर बहुत के पहाड़ के बराबर अजर देंगे। लेकिन शर्त ये है कि हो अल्लाह के लिए, उसमें दिखावा ना हो। और ये सारी सिफात मेरे अंदर, आपके अंदर, हर इंसान के अंदर आ जाए, इसके लिए सबसे बड़ा अमल दावत का। और मैं सबसे हैरान उस वक्त होता हूँ जब मुसलमान कहते हैं यार ये कहाँ से आया ये दावत का काम। अरे कुरान सारा दावत है, अगर आप कुरान में दावत है, अजान होती है ये क्या है, ये दावत है, अल्लाह दावत दे रहे हैं लोगों को आओ मस्जिद में आओ। नहीं सबको पता नहीं नमाज पढ़नी है, लेकिन 5 वक्त की अजान है वो क्या है, अल्लाह की तरफ से दावत है। सारे अंबिया कराम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, कुरान भरा पड़ा है, तर्जमा पढ़ के देख लें भी अल्लाह ने क्या हुक्म दिया था अंबिया कराम को, जाओ लोगों को मेरी तरफ बुलाओ। तो ये दावत का काम है। जब आप 3 दिन पे जाएंगे, 40 दिन पे जाएंगे, 10 दिन पे जाएंगे, क्या करेंगे काम, यही काम है। और इंसान अपने लिए जाता है, दूसरों के लिए थोड़ी जाता है, दूसरों को सिखाने जा रहे हैं, नहीं अपने लिए जा रहे हैं। मैंने जो नमाज़ पढ़नी सीखी है, जो कुरान पढ़ना सीखा थोड़ा बहुत, जो भी मैं इस टाइम अमल कर रहा हूँ वो मैंने जमात में निकल के किया है। मैं तो कलमा पढ़ गया घर बैठ जाता जैसे दूसरे मुसलमान बैठे हुए, तो मैं तो कुछ भी नहीं आना था मुझे, ना मुझे नमाज पढ़ना, मैंने मस्जिद में जाना था, क्योंकि आदत ही नहीं पड़ती आप। आज मस्जिदें क्यों खाली हैं, क्योंकि आदत नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है हमारी मस्जिद में जाने की। जब आप 3 दिन के लिए जाते हैं 15 नमाजें बाजमात मस्जिद में पढ़ते हैं तकबीरउल्लाह से, छोड़ दें बाकी चीज़ें, ये कितना बड़ा अमल है। हदीस में आता है जो 40 दिन तकबीरउल्लाह से नमाज पढ़ेगा 2 परवाने मिलेंगे, एक नफाक से छुटकारा और एक जहन्नम से। जी देखें 40 दिन जो तकबीरउल्लाह से नमाज, जो बंदा 40 दिन जमात में लगा रहा है तकबीरउल्लाह नमाज नहीं पढ़ेगा, जो 4 महीने लगा रहा तो जमात में वो तकबीरउल्लाह नमाज कितनी पढ़ेगा, वो कितना कुरान पढ़ेगा, उसने रहना ही मस्जिद में, उसने बाहर जाना ही दावत की लोगों को मस्जिद में बुलाने के लिए, तो उसमें भी आ गया, उससे बेहतर किसी की बात है लोगों को अल्लाह की तरफ। फिर अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं, अल्लाह को बेशी माफ़ करे, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो इसलिए कि लोगों को नेकी की हिदायत करो, खुद भी नेकी का काम करो, दूसरों को बुराई से बचाओगे, खुद भी बुराई से बचाओगे। तो ये तो कुरान में अल्लाह ने खुला बताया हुआ, लेकिन हम मुसलमान कहते हैं भाई ये काम कहाँ से आया, जाना ना जाना ये बात की बात है, ये काम तो ये शुरू से है। सहाबा सारी जिंदगी लिए चले गए, चाइना में सहाबा की कब्रें मिलती हैं, तक तुर्की में मिलती हैं, पाकिस्तान में मिलती हैं, क्या करने आए, वो कारोबार तो नहीं। मक्का मदीना छोड़ना कोई आसान काम था उनके लिए, दुनिया में उससे अच्छी जगह ही कोई नहीं, लेकिन वो सब चले गए। 10,000 सहाबा की कब्रें मिलती हैं बस मक्का मदीना में, बाकी सब पूरी दुनिया में चले गए, क्योंकि ये काम ऐसा है। ये तो हमारे लिए सादत की बात है अगर हमें अल्लाह इस काम में कबूल कर ले, ये तो अंबिया से काम लिया अल्लाह ने, अगर हम कर लेंगे हमारे लिए सादत की बात नहीं। जो अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है अगर वो अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल हो जाए तो ये हमारे लिए सादत की बात है, हमें तो खुश होना चाहिए। अल्लाह के आगे नफलें पढ़नी चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है, जैसे आप से आयशा रज़ा ने फरमाया कि आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आप इतनी मुशक्क़त क्यों उठाते हैं, सही से रात खड़े होकर नफलें क्यों पढ़ते हैं। तो आप से फरमाया कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूँ जिसने मुझे इतना कुछ दिया। तो अगर अल्लाह पाक हमसे मस्जिद में बुला लेते हैं तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। اللہ ہمیں سنت پہ عمل کرا دے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہاں جی اللہ ہمیں اللہ کے رستے میں نکال دیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اللہ پاک نے بھی ہمیں اس دور میں اس کا یہ کام دیا ہے, یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. اس کو جو کرے گا اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا آخرت میں بھی ہوگا. تو کون کون تیار ہے بھائی اس کے لیے؟ ادھر ہوتی ہے اس کے لیے کہ میں ایسے کر دی
کیوں نہیں کہ کچھ کہہ رہے تھے سوال جو.
اچھا جی کر لیں,
اگر کسی کے کوئی سوال ہے یوسف بھائی سے کرنا چاہے دین سے ریلیٹڈ. میں نے کہا دین سے ریلیٹڈ ہے, پچ اور بال شروع کرتے ہیں.
یہ بات انہوں نے صحیح کی کہ کرکٹ کا کریں, دین کا تو علماء سے کرنا چاہیے. ہمارے چھ نمبر ہیں یہ میں سنا سکتا ہوں, لیکن آپ کو اس دین کے معاملے میں پوچھے تو علماء ہیں ان سے پوچھنا چاہیے. کرکٹ کا پوچھنا تو ضرور پوچھ لیں, ایسے لیے نہیں پوچھ رہے.
تھوڑی سی مجھے پتا ہے ان کے بارے میں, واقعی وہ کرکٹ کا جنونی تھا. تو میں وہ آپ کا ٹور بھی پاکستانی کرکٹ کا آدمی تھا تو کافی کچھ پتا تھا. جو ان کی وہ بیٹی اور اس بات پہ جو آئے, جو آپ کی کنورژن تھی, کیونکہ آپ تو ان کے فیملی فرینڈ بھائی کے دوست ہیں یا کچھ اس طرح, تو وہ تھوڑا بتائیں جو ان کی زندگی نے جو اثر کیا اور ان کے ارد گرد کے لوگوں پہ, پھر ٹیم پہ اثر ہوا. تو جو آپ کی پوری زندگی, کیونکہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ ہے میرا خیال, آپ برائن لارا سے بھی نہیں ملے تھے اور وہ ساری چیزیں وہ ہمارے لیے بڑی میرا خیال ہے اندر سے کچھ چیزیں جگانے کے لیے کافی.
میں اپنی اس لیے کارکردگی سناتا کہ برا لگتا ہے, وہ تو آپ نے پوچھ لیا میں اس لیے بتا دیتا ہوں. ہمیں تو رائیونٹ سے ہدایات ملتی ہیں کہ بھی انبیاء کرام کا اور صحابہ کا ذکر کرنا ہے, کیونکہ وہ لوگ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اپنی بات کرنا صحیح نہیں ہے, تو ہمارے اندر 100 غلطی ہیں. کل آپ دیکھیں گے آپ کے یا ادھر بیٹھ کے تو یہ بات کر رہا, آپ دیکھو کیا حرکتیں کر رہا. تو بات تو سوالی کا, اب آپ نے پوچھا ہے تو میں اس لیے بتا دیتا ہوں. جیسے میں نے شروع میں تھوڑا سا بتایا کہ میں شروع سے مسلمان لوگوں میں رہا ہوں, میرے ہمارا صرف گھر تھا وہاں کرسچنوں کا, اور وہ سارے دوست تھے ہمارے, کرکٹ کھیلتے تھے اکٹھے ہم سب. لیکن کبھی بھی ایسا شوق پیدا نہیں ہوا کہ اسلام کے بارے میں ان سے پوچھیں یا کوئی ایسی چیز ہو. تو جب میں کالج میں, جو کہ کوئی لاہور کے رہنے والے انہیں پتہ ہوگا ایف سی کالج کا, تو میں ہمارا داخلہ ہوا ایف سی کالج میں 1990 میں, میں اور سعید بھائی کا بھائی بھی اس وقت کچھ جانتے نہیں تھے ہم ایک دوسرے کو, لیکن اس کا بھی داخلہ ہوا تو گیم بیس پہ ہوا تھا. پڑھائی میں تو میں بالکل فیل تھا. ابھی مولوی صاحب مجھے پوچھے تھے آپ کو مطالعہ کرتے ہیں, میں کتاب کھولتا ہوں مجھے نیند آ جاتی ہے. پڑھنے پڑھانے سے میرا اتنا کوئی, میں سنتا ہوں بس, علماء کی بات سنتا ہوں یا بیان سنتا ہوں. تو وہ ہم دو داخلہ ہو گیا ہمارا, تو گھر آنا جانا شروع ہو گیا ہمارا. تو ان کے والدین نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا تھا, تو میں اب ان کے گھر میں شروع سے رہا ہوں. لیکن جو زندگی ابھی آپ سعید بھائی کی, ایسے نہیں تھے وہ, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. لیکن جب انہوں نے بدلا ہے 3 دن, ایک ہمارے پلیئر تھے ذوالقرن نین, وہ پاکستان کی طرف سے کھیلنے میں جاوید بھائی نے جب چھکا مارا تھا انڈیا خلاف, اس میچ میں وہ وکٹ کیپر تھے. تو کبھی کبھی ہم پوچھتے بھی بھائی آپ کو ہٹ مارنے کی کیا ضرورت تھی, سامنے جاوید بھائی کھڑے سنگل لے کے چلے جاتے ادھر, کہتے یار بس میں نے چلا دی. بہرحال وہ تبلیغ میں اس ٹائم لگ گئے ہوئے تھے, 3 دن وغیرہ ان کے لگتے تھے. لیکن جب وہ کرکٹ ختم ہوئی انہوں نے 4 مہینے لگائے, تو پھر اپنے جو قریبی لاہور کے کرکٹر تھے ان کے پاس گشت پہ جاتے تھے, تو سعید بھائی کے پاس بھی آتے تھے. تو میں اکثر سعید بھائی کے گھر پہ ہی ہوتا تھا, کیونکہ وہ کالج سے شادمان میں رہتے تھے, میرا گھر آگے گڑی شو میں تھا, رستے میں ان کا گھر آتا, تو میں مغرب کے بعد گھر جاتا ہوتا تھا جب اندھیرا ہوتا. تو وہ آتے تھے تو یہ ملتے نہیں تھے سعید بھائی, یہ اندر سے منع کر دیتے تھے. وہ اندر سے نہیں آواز چلی جاتی باہر بیل بجاؤ, تو اس میں وہ کہتے تھے سعید گھر پہ نہیں, خود بھی کہہ دیتے تھے. کئی دفعہ میں نے جا کے کہا بھی سعید گھر پہ نہیں ہے, लेकिन वो गश करने से कहाँ बाज आते हैं, आप चाहे मिलो ना मिलो, गालियाँ दो जो मर्जी करो। अभी हम रमज़ान में एक सैरोजे पे गए हुए थे, तो एक जगह पे गए हम लोग, तो असर से पहले गश्त होता, तो हमने बेल की, वो बंदा बाहर आया, बाहर भी नहीं आया उधर से, उसने इतनी दूर था सड़क से, उसका घर थोड़ा दरवाज़ा अंदर था, और मुझे पता है आप जाओ बस, बात नहीं सुनी हम चले। हमने कहा ये तो ताइफ में भी ऐसे ही बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने बात कहाँ सुनी है, तो ये भी चलता है, कोई इसमें वो नहीं, लेकिन हमने तो गश्त करनी करनी। इसी तरह जुल्लू भाई भी गश्त करते ही करते थे, जुल्कनैन भाई आते ही आते थे, उन्होंने बहुत अरसा गश्तें की, फिर तंग आ गए सईद भाई एक बार सहरोजे पे गए उनके साथ, तो सहरोजे से जो ज़िंदगी बदली उनकी, जैसे मैं अभी बता रहा था, 3 दिन में इंसान जो अल्लाह ने उनको बदला है, वो जो ज़िंदगी लेके हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उससे मुझे फ़ायदा हो गया, फिर मैंने उनके हाथ पे कलमा पढ़ा। लॉन्ग है स्टोरी, एक तो ये कि मैंने उनकी ज़िंदगी देखी, फिर उन्होंने मेरे से बात की कि आप दुआ किया करो अल्लाह से, या जिससे भी आप समझें, उन्होंने कहा अगर जीसस से मांगना है जीसस से मांगो कि मुझे हक और सच का रास्ता दिखा दो। तो मैं रात को सोने से पहले ना दुआ मांगता था, तो अल्लाह ने फिर मुझे, ख्वाब में एक लड़का था जो मेरे साथ एक बैंक में खेलता था, वो हाफिज़ था, मैं जब भी बैटिंग करने जाता ना, वो मेरे बल्ले पे कुछ फूंकता था तो स्कोर हो जाता था, तो मेरा भी यकीन बन गया, मैंने कहा यार मैं बैटिंग करने जा रहा हूँ, हालांकि मैं क्रिश्चियन था उस वक्त, तो वो आई जाई होगी बात, मैं बाहर चला गया इंग्लैंड लीग खेलने, वो बैंक छोड़ गया, हमारी मुलाकात अब काफ़ी अरसे से नहीं हो रही थी, तो 5-6 साल हो गए। तो जो मैंने ख्वाब देखा उसमें वही लड़का आया, उसने कहा जी मैंने सुना यूसुफ भैया मुसलमान हो गए, ये बात उसने मेरे से ख्वाब में की। फिर कोई 5 साल जो मेरी मुलाकात नहीं हुई हमारी, लेकिन ख्वाब के महीने बाद हमारा मैच था शेखुपुरा, वो शेखुपुरा का रहने वाला था लड़का, हमारे PIA से खेलता था और हमारा नेशनल बैंक से मैच था, हम लोग मैच खेलने फर्स्ट क्लास का गए शेखुपुरा, तो क्योंकि लाहौर से शेखुपुरा 40-50 मिनट का रास्ता, तो अपनी अपनी गाड़ियों पर सब जाना, तो मैं थोड़ा जल्दी चला गया, तो मैं जब ड्रेसिंग रूम में गया तो मैं अकेले ही था, तो ये लड़का आया, ये जो 5 साल बाद मेरी उसकी डायरेक्ट मुलाकात हो रही है, और उसने मेरे से आगे कोई बात नहीं की, उसने कहा यूसुफ भाई सुना आप मुसलमान हो गए, वही बात जो ख्वाब में मुझे उसने की थी, ये 5 साल बाद मुझे मिल रहा है, उसने वही बात मुझे फिर की। तो उसी दिन वापस आगे मैंने सईद भाई के हाथ पे कलमा पढ़ लिया, तो मैंने कहा इससे बड़ी और क्या हो सकता है, अल्लाह तो नीचे नहीं आ सकते ना उसमें। सईद भाई ने यह भी कहा था हमें देख के तू मुसलमान नहीं हो सकता, तो दुआ करो अल्लाह से, ये तो वाकई सही है, कोई मुसलमान को देख के आज कोई मुसलमान नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल काम है, कोई बहुत है, हदायत अल्लाह के हाथ में, इसमें कोई शक नहीं, कलमा देने वाले हदायत देने वाले अल्लाह है, लेकिन कोई ना कोई ज़रिया बनेगा, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे सब ने कलमा पढ़ा, ज़रिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने, लेकिन अबू तालिब को कलमा नहीं मिला, क्योंकि अल्लाह ने उनकी किस्मत में हदायत नहीं थी, नहीं मिला। तो बाकी ये सब ज़रिया कौन बने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ज़रिया कौन बनेगा, जिसम हमारा होगा तरीके मोहम्मद रसूलुल्लाह के, फिर ही होगा, लेकिन आम मुसलमान से तो कोई मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि उससे खुद नहीं फ़ायदा हो रहा, क्योंकि वो खुद नबी की ज़िंदगी नहीं ले रहा, महबूब की ज़िंदगी वो नहीं ले रहा, तो अल्लाह कैसे राज़ी होंगे उससे। बाकी अल्लाह जिससे चाहे पकड़े, जिसको ये छोड़े, ये अल्लाह की, अल्लाह जानते हैं, लेकिन जो बात पहुँची है वो यही कि जो महबूब की ज़िंदगी इख्तियार करेगा अल्लाह उससे राज़ी होगा, ये अल्लाह कुरान में भी फरमा रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं मैं उससे मोहब्बत करूँगा, मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर दूंगा जो मेरे नबी की मुकम्मल इत्तबा, और आप सब खुद भी फरमा रहे हैं कि उस वक्त तक कोई इंसान मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो उस दीन के ताबिक न हो जाए जो दीन मैं लेकर आया हूँ। अब दीन पे पूरा पूरा आना पड़ेगा ना, आधा इधर आधा उधर तो नहीं रह सकते, या हम लिबरल हो जाएं, लिबरल तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है इस्लाम में, आए लिबरल मुसलमान भी है। तो ये सईद भाई सही तरह दीन पे हैं, तो अल्लाह ने उनकी वजह से मुझे कलमा दे, बाकी तो कोई इसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं, बाकी आपके सामने ही है सारा कुछ, आप लोग सब देख रहे हैं, मैंने तो सारी ज़िंदगी देखी क्रिश्चियनिटी में, कुछ भी नहीं, कोई हदूद ही नहीं, कोई पाबंदी नहीं है, कुछ नहीं, कोई डिसिप्लिन, कुछ भी नहीं, जब उठो जब दिल करे जो मर्जी खाओ पियो, कोई पता ही नहीं, ये तो अल्लाह ने इस्लाम में सब कुछ बताया, इस्लाम मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है, तो अल्लाह का एहसान है, कलमा अल्लाह ने दिया है, ज़रिया सईद भाई बन गए और बाकी ये सारा तबलीग वाले हैं। ज़रिया भी तबलीग वाले बने, सईद भाई का भी, हमारा भी। तबलीग से ही दीन फैला हमेशा, उस वक्त भी अभी भी। तबलीग वो भी करता है, शैतान भी करता है, अपनी तरफ बुलाता है ना, वो वसवसे डालता है, धोखे देता है, गुनाह करवाता है। जैसे आजकल बड़ा शैतान बंद है तो बड़े गुनाह कम होते हैं, छोटे छोटे हो रहे होते हैं, छोटे छोटे अभी भी हो जाते हैं, लेकिन बड़ा काम कम है। और कोई भाई पूछ रहे थे आज? वैसे मैं चर्च में भी जाता था, मैं बाइबल भी पढ़ता था, कोई ऐसा नहीं, लेकिन ये अल्लाह पाक के हाथ में था, अल्लाह ने एकदम बदला अभी जी। नबी की ज़िंदगी और तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, और क्या नमाज कौन देख रहे हैं इधर हम पढ़ रहे हैं, किसी को पता? ये तो 24 घंटे की जो ज़िंदगी आपकी, जो आप बाहर लेके जाएंगे, जो मामलात भी हैं, जिसमें मामलात हमारे देखें कितने ख़राब हैं। नबी की ज़िंदगी जो है ये हमें भी फ़ायदा देगी, दूसरों को भी देगी। देखें आप लोग, आप सोच सकते हैं कि 24 घंटे की ज़िंदगी देख के लोग मुसलमान हुए। जब उन्होंने आपसे फरमाया कि मैं अल्लाह का मैसेंजर हूँ, उससे पहले सब क्या कहते थे आप सब? अमीन भी कहते थे, सादिक भी कहते थे, अपनी इमानतें भी उनके पास रखवाते थे। लेकिन जैसे दावत का काम आया तो वो उन्होंने कहा जी बस, खिलाफ हो गए सब। तो आज भी देखें आप, दावत का काम करेंगे लोग खिलाफ हो जाते हैं, घर में कहीं खिलाफ हो जाते हैं, घर में कहते हैं ये कहाँ से आ गया भाई, कोई यंग लड़का दाढ़ी रख रहे उस पर घर वाले खराब हो जाते हैं, अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है। ये नबी का तरीका है बहुत बड़ा। ये तो मेरा मकसद है कि सादत की बात है, इस पर तो खुश होना चाहिए। मेरा अपना बेटा नहीं रख रहा, मैं उसको रोज़ कहता हूँ यार ये बुरा लगता है, अल्लाह के बंदे क्या कर रहा है, आखरत ख़राब हो जाएगी, पकड़ा जाएगा। ये नहीं कि हम अपने बच्चों को छोड़ दें दूसरा, नहीं, अपने ऊपर भी यही है सब कुछ। ये सुन्नत के बगैर कहाँ गुजारा होगा। सख्त अल्फाज हैं लेकिन क्या करें, अब मेरा मतलब ऑपरेशन भी कराना पड़ जाता है जब बंदा ज़्यादा बीमार हो जाए। अभी हम रूहानी तौर पे बीमार हैं सब, हमें अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात समझ नहीं आती, सुनना भी नहीं चाहते। अब यार ये मौलवी और यही बात करते रहते हैं मरने मराने की। आप सब कह रहे हैं कि मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो, लेकिन हम कहते हैं मौलवी साहब यही बात करते रहते हैं। असल हकीकत तो ये है कि हम सब ने मरना है, झूठ ये है कि ज़िंदा रहना है। कोई बच जाए, आज तक बचा कोई इंसान? अगर कोई दुनिया में रहने की किसी का हक होता वो आपसे सुन रहते, तो वो भी चले गए। 63 साल तो एवरेज एज है इस्लामिक में, है उससे भी कम है, ऐसे एज 60-61 है इस्लामिक हिसाब से, ये एवरेज एज है हम सब की। मैं 52 का होने वाला हूँ, पता नहीं और भी कोई होंगे 50 से ऊपर हैं जी ऐसे, तो कितना टाइम रह गया हमारे पास, किस चक्कर में हम लोग कितना का मॉडल बन जाएंगे, हम कितने के मज़े कर लेंगे, क्या कर लेंगे। फिरौन को 400 साल अल्लाह ने सर में दर्द नहीं होने दिया, अभी इबरत का निशान बनाया, सोचे आप। तो ये थोड़ा सा वक्त है, इसको हम अच्छे तरीके से गुजार के चले जाएं, ताकि अल्लाह हम सबको सीधे जन्नत में भेज दे, वाया दोज़ख में ना आना पड़े। जैसे फ़्लाइटें होती हैं ना, पाकिस्तान जाना है तो मैं तुर्की से आया तो वाया तुर्की जाऊँगा, जन्नत में जाने के लिए को वाया ना पड़ जाए। अल्लाह हम सब की इबादत करे, सीधे जन्नत में ले जाए, बाप बरकत महीना है। लेकिन अमाल तो करने पड़ेगा, बगैर अमाल कैसे होगा? पाकिस्तान टीम में आ गए, स्कोर करेंगे तो उधर रहेंगे ना, स्कोर नहीं करेंगे तो बस गालियां पढ़नी शुरू होंगी पहले लोगों से, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, फिर बाहर कर देंगे। तो आपको हर दुनिया में भी देखें ना, आपने कहीं जॉब मिल गई, काम करना पड़ेगा, बगैर जॉब कौन पैसे देगा। तो अल्लाह ने कलमा दे दिया, अब इस पर अमल कर रहे हैं ताकि सीधे जन्नत में चले जाने वाले। आसान काम है, कोई मुश्किल होता तो मेरा मकसद है कि साहबा ही नहीं कर पाते। सबसे आसान काम ही है, क्योंकि अल्लाह ने खुद ही करवा लेना सारा, आपने सिर्फ कोशिश करनी। आप रात को नियत कर लें, अल्लाह से दुआ कर लें कि अल्लाह मैंने फजर पे जाना है, अल्लाह उठा देंगे, आप लारम लगाए पहले भी उठ जाएंगे। जिसकी नियत ही होती, लारम बज रहा होता है वो खुद ही बंद करके फिर सो जाता है, उसकी नियत ही नहीं है। जिसके दिल में तलब नहीं होगी उसको अल्लाह नहीं देंगे, दिल में तलब होनी चाहिए। और जो काम नदानी में होता है ना उसको अल्लाह माफ़ कर देते हैं। जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नदान थे, वो समझते थे कि मेरा दीन सही है, इसीलिए अल्लाह ने उनको कलमा दे दिया। अबू जहल को नहीं दिया, वो जानबूझ के करता था, वो जानबूझ के रुकावटें डालता था इस्लाम के। बंद कर दें, चलता रहे, बंद कर लें, दुआ कर लें, कोई सवाल तो नहीं किसी का।
नहीं, मैंने कहा था यूसुफ भाई, सबसे बड़े चैलेंज जो है ना इस्लाम लेने के, आपको क्या होगा, ये मुख्तसर
ये चैलेंज। तो देखिए, जब मैंने ऐलान किया ना, मैं पहले तो मेरी अम्मी इतना गुस्से में, घर में सारा कोहराम मच गया। लेकिन वो देखे ना, हाई साहब रहमतुल्लाह अलैह ना, अल्लाह से डायरेक्ट दौड़ती हैं, उन्होंने 3.5 साल तो छुपा के मेरा रखवाया। मैंने कलमा 2001 में पढ़ लिया था, लेकिन छुपा के रखा था, 2005 में ऐलान किया, उस वक्त जब मैंने उमरा किया। और उमरा भी हाई साहब ने मेरा क्रिश्चियन पासपोर्ट पर करवाया। मैं कहा आयिस साहब, ये आप कह रहे हो उमरा कर लो, मेरा पासपोर्ट क्रिश्चियन है। कह रहे अल्लाह को पता, तुम जाओ कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह ने उमरा करवा दिया उस पर। तो उमरा हमने किया है फजर के बिल्कुल फजर शुरू होने लगी, फजर पड़ी है, आयिस साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा मेरे चांद आप ऐलान कर देना, क्योंकि अगर मैं उस वक्त ऐलान करता तो शहर में वापस हो जाता, क्योंकि घर वालों का इतना प्रेशर था, फिर कम्युनिटी का इतना प्रेशर था। अभी तक गैर मुस्लिम मेरे से नाराज़ है, अगर मैं ट्विटर दिखा दूँ ना जितनी मुझे गालियाँ पड़ती हैं गैर मुस्लिम से। अब वो तो अब नदान है, उनको क्या कह सकते हैं, उनका कसूर नहीं, उनको पता ही नहीं इस्लाम के बारे में। वो अगर बुरा भला कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब अपने लोग कह रहे हैं वो बुरा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता कि आप तो मुसलमान हो यार, आप कैसे सुन्नत के खिलाफ जा सकते, आप कैसे से कह सकते हो यार ये नमाज ही पढ़ते रहते हैं इसलिए हार गए। कमाल हो गया वैसे। अभी मैं एक पॉडकास्ट में था, कोई 2-3 हफ्ता पहले, रमज़ान से 1-2 दिन पहले मेरा पॉडकास्ट, उसमें मेरे से एंकर ने सवाल कर दिया कह रहे जब आप लोग क्रिकेट खेलते थे तो इंजमाम भाई की वजह से दीन का रुझान बहुत था, तो आप लोग इसलिए उस पर थे। मैंने कहा भाई किसने कहा आप, मैंने कहा किसी गैर मुस्लिम ने कहा, कह नहीं अपनों ने कहा। मैंने कहा मैं हैरानगी है फिर उनके ईमान पे। और नवाब भाई ने तो मेरे बाद दाढ़ी रखी है, ये नहीं नवाब भाई को हम कह रहे हैं, लेकिन वो बेचारे हमारे देखे कहाँ हम पहुँच गए हुए हैं, हम इस्लाम से कितनी दूर हैं कि हमें खुद ही शक है, तो माहौल से दूरी इस पर शक है। जिस माहौल में रहते हैं ना, दुनिया दुनिया दुनिया, उसमें फिर यही बात है, फिर लिबरल हो जाएंगे हम। लिबरल कुछ नहीं है, सिर्फ कलमा है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। अगर खुदा ना खास्ता किसी से नहीं अमल हो रहा, लेकिन उसको ये तो ना कि ये गलत है, क्योंकि अपना ही नुकसान होना है। हाँ ये कहे हम कमज़ोर हैं, इंशाल्लाह हम भी करेंगे, जो कि आपसे अमल नहीं हो रहा, मैं इससे नहीं हो रहा, मैं कहूँगा जी मैं कमज़ोर, दुआ करें इंशाल्लाह अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं करूँगा, तो अल्लाह मौका दे देंगे। अगर हम अड़ जाएंगे उस पर, डट जाएंगे, तो फिर कहाँ मौका मिलेगा। जैसे शैतान डट गया कि मैं सही हूँ, तो अब देखें उसका क्या हाल होगा। और आदम अलैहिस्सलाम ने माफ़ी मांगी हो। और तो कोई
नहीं
है, नहीं सब हो गए थे। मेरे वालिद साहब कलमा पढ़ने के 10 दिन बाद फौत हुए, अल्लाह ने बचा लिया उनको, वालदा को भी अल्लाह ने कलमा पढ़ा दिया, सब हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। हाई साहब ने एक बात फरमाई थी मुझे पहले दिन, उन्होंने कहा बेटा जो वालदेन दुनिया के मामले में कोई भी बात करे ना, उसको फौरी करो, और कभी आगे से उफ भी नहीं करनी, और दीन के मामले में कोई बात करें ऐसी जो दीन के ख़िलाफ़ है वो बिल्कुल नहीं माननी, लेकिन बोलना कुछ नहीं, बोलना कुछ नहीं। वालदेन क्या कि आप बोल नहीं सकते, والدین اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑی ہستی والدین ہے جن کی وجہ سے آج ہم ہیں. میں سمجھتا ہوں جو مجھے کلمہ ملا میرے والدین کی وجہ سے ملا, وہ ایسی اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی, ایسے لوگ تھے. غربت کی حالت میں کبھی انہوں نے دو نمبر ہی نہیں کی, اس وجہ سے اللہ نے ملا. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ان کو بھی دے دیا اس کلمہ, ورنہ ہمارے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں تھی.
بڑی وجہ کی آپ سے منحرف ہو جائے اور آپ کو اگنور کرنا شروع کر دے, اور اس طرح سا فیل ہو آپ کو کہ جیسے کہ آپ کی زندگی میں انہوں نے اگنور کر دیا اور آپ ہیں یا نہیں برابر ہیں ان کے لیے, تو ایسی اولاد کے لیے کیا حکم ہوتا
ہے؟ یہ تو مفتی صاحب بتا سکتے ہیں.
آپ سے
میں کیا, یہ تو فتوی والی بات ہے کوئی
نہیں.
میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں ہر حال میں والدین تو عزت کرنی ہے, ان سے محبت کرنی ہے. دیکھیں نا حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے والدین کو روزانہ مسکرا کے دیکھے گا نا, ایک مقبول عمر حج کا ثواب ہے. آپ سوچیں اس سے بڑی اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ والدین سے زیادہ تو کوئی خیر خواہ ہے ہی نہیں دنیا میں. والدین کی تو احترام عزت ایسے کرنا ہے کہ جیسے بس سب کچھ یہی ہے. لیکن دین کے معاملے میں وہ غلط بات کہیں وہ نہیں ماننی, کہیں وہ بھی ماننا شروع ہو جائے میرے والدین نے کہا ہے. جیسے آج ہم کہتے ہیں نا جو وہ ہمارے بڑے بھی یہی کرتے تھے ہم بھی یہی کریں گے, وہ نہیں صحیح. جیسے ادھر دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نہیں آئے اسلام پہ, وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے یہی کرتے رہے, ان کے 365 بت ہیں, وہ ہمارے یہ ساری چیزیں پوری کرتے ہیں, ہم کیسے چھوڑ دیں ان کو؟ تو وہ بیچارے پھنس گئے. تو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی وہ کامیاب ہو گئے. تو دین کے معاملے میں نہیں بات ماننی, ویسے ہر چیز ماننی. وہ کہیں پیسے اتنے دے دیں, یہاں کر دو, وہ کر دو, یہ کر دو, وہ مان لیں بات. لیکن دین کے خلاف بات کریں وہ بالکل نہیں مانے. جیسے میں نے اسلام قبول کر لیا, میرے والد صاحب ذرا ریلیکس آدمی تھے. انہوں نے کہا چلو تو کلمہ پڑھ لے, پنجابی سمجھ آتی کسی کو؟ تو انہوں نے کہا چلو تو کلمہ پڑھ لے, داڑھی نہ رکھ لی. میں نے ان کی یہ بات نہیں مانی کیونکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. کیسے مان لیں؟ مان نہیں سکتے آپ ایسی بات. تو والدین کی ایسی بات نہیں ماننی جس میں آخرت کا نقصان ہو جائے, کیونکہ آخرت میں کسی نے کسی کا کام نہیں آنا, سب کا اپنا اپنا ہوگا. ہاں جی, اور کوئی
دعا کرے گا؟
میں صلاۃ تسبیح ہوتی ہے وہ روزانہ ان کے لیے پڑھنی پڑے, انہیں بھی پڑھنی پڑے گی.
بنگالی بھائی ہمارے,
آپ تو جیت گئے یار.
صلاۃ تسبیح تو عاقب جاوید اور نقوی صاحب کو پڑھنی دیں.
پلیئر کھیلنے والے تو پلیئر ہیں.
کچھ سلیکٹ آپ کی سلیکشن کیا ہے؟ مطلب
سسٹم ہوگا تو ٹیلنٹ اوپر آئے گا.
آپ کا ایک بیٹسمین تھا, آپ نے 50 ٹیلی ویژن پہ آپ کو ڈیلی بیٹھ کے اس کو مینٹلی اتنا شیٹرڈ کر دیا کہ اس سے بیٹ نہیں ہو رہا. اتنا کرٹیسم اس کے اوپر ہوا ہے.
جو نہیں کھیلے گا اس کو کیسا؟ یہ ساری چیزیں غلط ہیں. دیکھیے بڑا پلیئر وہ ہوتا ہے جو پریشر سے نکلتا ہے. نام کس کا بنا ہو؟ جاوید بھائی کا نام تو کیوں تھا جب پریشر پڑتا تھا اسکور کر کے؟ سعید انور کیا تھا, کیوں نام؟ ہر پریشر میں نکلتا. ہمیں ہمارے دور میں بہت مشکلات تھیں, ان کے دور میں تو ہے ہی نہیں.
لیکن آپ کے دور میں پلیئر بہت بڑے تھے.
جب آپ کے پلیئر ہوتے ہیں نا پھر آپ کو باہر کر دیتے ہیں.
وہ بالکل صحیح ہے.
یہ 3 سال سے کھیل ہے, سوشل میڈیا اتنی بیک ہے. آپ لوگوں کی آپ دیکھیں کتنی بیک کر رہے ہیں.
بالکل
3 سال سے پاکستان کی ٹیم ہے نا, جو کہ گھر کی ٹیم کو نہیں. اگر آپ
وہ کہہ رہے ہیں کہ اجتماعی دعا,
اجتماعی میں کروں؟ نہیں, علماء کر. میری دعا بہت چھوٹی, ایک سیکنڈ میں ختم ہو جاتا. درود شریف پڑھ لیں. یہ بھائی پیچھے ویڈیو بنائی جا رہے ہیں اللہ کے بندے, یہ کاٹ دو ساری. ابھی دعا سے پہلے کاٹ دو بھائی, مسجد میں بیٹھے ساری کاٹ دو, جلدی سے کاٹ دو. ये भाई बैठे काट दें, आपसे रिक्वेस्ट है काट दें, देख लें मस्जिद में है काटनी भी है, ये आप लगा देंगे और हमें गालियां पड़ेंगी फिर सबसे कर दी नहीं हो गई नहीं वो यूं कर रहे मैं कह रहा दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे अल्लाह वसल्लम الحمد لله رب العالمين اللهم نجعلك في نخور ونعوذ بك من شرور لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين یا اللہ جو کہا سنا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہم سب اپنے حکموں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے رستے میں دیر و دور کے لیے قبول فرما جن بہن ارادے کیے ہیں جو نہیں کیے یا اللہ ہم سب کو قبول فرما یا اللہ مرتے وکلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرما صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین جزاک اللہ
السلام علیکم اور افطار کا انتظام نیچے کیا ہوا ہے ان شاء اللہ دیر از پریپریشن فار افطار ڈاؤن اسٹیئرز سو پلیز پروسیڈ ڈاؤن اسٹیئرز ان شاء اللہ جزاکم اللہ خیر